ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 57। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, ऐसी दृष्टि का आश्रय करो जो दुख का नाश करती है। निसंग सन्यासी होकर अपने सब कर्म और चेष्टाओं को ब्रह्म अर्पण करो, जिसमें यह सब है और जिससे यह सब है, ऐसी सत्ता को तुम परमात्मा जानो। अनुभव रूप आत्मा है, उसकी भावना से मनुष्य उसी को प्राप्त होता है, इसमें संशय नहीं है। जो सत्ता संवेदन से रहित चैतन्य है, उसी को तुम परम पद जानो। वह सबका परम दृष्टा रूप और सबका प्रकाशक है। महाउत्तम परम गुरुओं का गुरु है। जिसको शून्यवादी शून्य, विज्ञानवादी विज्ञान और ब्रह्मवादी ब्रह्म कहते हैं, वह परम सार शांत रूप शिव अपने आप में स्थित है। वही आत्मा इस जगत रूपी मंदिर को प्रकाश करने वाला दीपक, जगत रूपी वृक्ष का रस, जगत रूपी पशु का पालने वाला गोपाल और जीव रूपी मोतियों को एकत्र करने वाला तागा है। हृदय और भूत रूपी मिर्चों में तीक्ष्णता है। निदान सब पदार्थों में पदार्थ रूप सत्ता वही है। सत्य में सत्यता और असत्य में असत्यता वही है। जगत रूपी ग्रह में सब पदार्थों को प्रकट करने वाला दीपक वही है और उसी से सब सिद्ध होते हैं। चंद्रमा, सूर्य, तारे आदि जो प्रकाश रूप दिखते हैं, उनका भी वह प्रकाशक है। यह जड़ प्रकाश है और वह चैतन्य प्रकाश है। उसमें यह सिद्ध होते हैं और उसी से सब प्रकाश प्रकट हुए हैं। वह आत्मसंवित अपने ही विचार से पाया जाता है। हे रामचंद्र जी, जो कुछ भाव अभाव पदार्थ देख पड़ते हैं, वे असत है, वास्तव में कुछ नहीं है। प्रमाद दोष से भासित होते हैं और जब ज्ञान विवेक उपजता है तब नष्ट भी हो जाते हैं। हे रामचंद्र जी, जिसके हृदय में अहम भाव है, उसे यह जो जगत जाल मिथ्या भ्रम से भासित होता है, उसको उपजा क्या कहिए और उसकी आस्था किसकी आस्था कीजिए। यह जगत कुछ वस्तु नहीं, आदि अंत मध्य की कल्पना से रहित जो देव है, वह ब्रह्म सत्ता समान अपने आप में स्थित है। और द्वैत कुछ नहीं बना। जब यह तुमका दृढ़ निश्चय होगा तो तुम व्यवहार करते भी हृदय से निसंग और शांत रूप होंगे। हे रामचंद्र जी, जिस पुरुष की उस समान सत्ता में स्थिति हुई है, वह इष्ट अनिष्ट की प्राप्ति में राग द्वेष से रहित हृदय से सदा शांत रूप रहता है। वह न उदय होता है न अस्त होता है, सदा संभाव में स्थित रहता है। वह स्वस्थ रूप अद्वैत तत्व में स्थित होता है और जगत की ओर से सुषुप्त सा हो जाता है। व्यवहार भी करता है परंतु दर्पण के सदृश उसे क्षोभ नहीं होता। जैसे मणि सब प्रतिबिंब को ग्रहण करती है परंतु उसका संग नहीं करती, वैसे ही ज्ञानवान पुरुष कभी कलना कलंक को नहीं प्राप्त होता। उसका चित्त व्यवहार में सदा निर्मल रहता है। ज्ञानवान को जगत आत्मा का चमत्कार भासित होता है। वह न एक है न अनेक, आत्म तत्व सदा अपने आप में स्थित है। चित्त में जो यह चेतन भाव भासित होता है उस चित्त के चेतने का नाम संसार है और फुरने से रहित शांत चित्त का नाम परम पद है। हे रामचंद्र जी, महाचैतन्य में जो निज का अभाव है कि मैं आत्मा को नहीं जानता, इसी का नाम चित्त स्पंदन कहा गया है और यही संसार का कारण भी है। जब इस भावना का क्षय हो तब चित्त शांत हो। हे रामचंद्र जी, जहां निज भाव होता है वह पदार्थों का अभाव होता है। वह निज सत्ता सब ठोर अपने अर्थ को सिद्ध करती है परंतु आत्मा में नहीं प्रवृत्त हो सकती। जब जीव कहता है कि मैं आत्मा को नहीं जानता तब भी आत्मा का अभाव नहीं होता, क्योंकि अभाव को जानने वाला भी आत्मा ही है। जो आत्म तत्व न हो तो अभाव कौन कहे। वह आत्मा परम शून्य है परंतु अजड़ रूप परम चैतन्य है। हे रामचंद्र जी, तुम निज का अर्थ आत्मा में करो और आत्मा का अभाव न मानो। अनात्म में जो निज का भावत्व है उसका अभाव करो, अर्थात अनात्म को अभाव रूप मानो। जब इस प्रकार दृढ़ भावना करोगे तब संसार का भ्रम निवृत्त हो जाएगा और केवल आत्मभाव शेष रहेगा। हे रामचंद्र जी, चित्त के फुरने का नाम संसार है। चित्त के फुरने से ही संसार चक्र चलता है। जैसे सुवर्ण से भूषण प्रकट होते हैं वैसे ही चित्त से त्रिपुटी होती है। पर चित्त स्पंदन भी कुछ भिन्न वस्तु नहीं, आत्मा का आभास रूप है। अज्ञान से चित्त स्पंदन होता है और ज्ञान से लीन हो जाता है। जैसे सुवर्ण के भूषण को लगाने से भूषण बुद्धि नहीं रहती, वैसे ही चित्त अचल होने पर चित्त संज्ञा जाती रहती है। और जैसे भूषण के अभाव पर सुवर्ण ही रहता है, वैसे ही बोध से चित्त के लीन होने पर शुद्ध चैतन्य सत्ता शेष रहती है। फिर भोगों की तृष्णा लीन हो जाती है और जब भोग भावना निवृत्त होती है तब ज्ञान का परम लक्षण सिद्ध होता है। हे रामचंद्र जी, जो ज्ञानवान पुरुष है और जिसने सत्रूप को जाना है उसको भोग की इच्छा नहीं रहती। जैसे जो पुरुष अमृत पान से अघा जाता है उसको खली आदि तुच्छ भोजन की इच्छा नहीं रहती, वैसे ही आत्मज्ञान से जो संतुष्ट हुआ है उसको विषय की तृष्णा नहीं रहती। यह निश्चय करके जानो कि जब चित्त फुरता है तब जगत भ्रम भासित होता है और सत्य जानकर भोग की इच्छा होती है, पर जब बोध होता है तब जगत भ्रम लीन हो जाता है, तब फिर तृष्णा किसकी करे। यदि इंद्रियों के विषय प्राप्त हो और हटकर उनको न भोगे वह मूर्ख है। वह मानो अस्त्र से आकाश को छेदता है। हे रामचंद्र जी, गुरु और शास्त्रों की युक्ति से मन वश होता है, युक्ति बिना उनकी शुद्धि नहीं होती। यदि कोई अपना अंग ही को काटे और उससे चित्त को स्थिर किया चाहे तो भी चित्त स्थिर नहीं होता और न संसार भ्रम ही मिटता है। जब तक चित्त में स्थिति है तब तक जगत भ्रम दिखता है और जब गुरु और शास्त्रों की युक्ति ग्रहण करके चित्त का अभाव होता है तब चित्त नष्ट और अचल हो जाता है। जैसे बालक को अंधकार में पिशाच देख पड़ता है और दीपक जलाकर देखे से अंधकार निवृत्त होकर पिशाच भ्रम नष्ट हो जाता है, तब बालक निर्भय होता है। वैसे ही आत्मज्ञान रूपी युक्ति से अज्ञान निवृत्त होता है। असम्यक बुद्धि से जगत भ्रम हुआ है और सम्यक बोध से निवृत्त हो जाता है। फिर जाना नहीं जाता कि अज्ञान का जगत भ्रम कहा गया। जैसे दीपक का निर्वाण होने पर नहीं जाना जाता कि प्रकाश कहा गया, वैसे ही अज्ञान नष्ट होने पर नहीं जाना जाता कि जगत कहा गया। चित्त के फुरने से बंधन होता है और न फुरने से मोक्ष होता है, परंतु आत्मा से भिन्न कुछ नहीं। आत्मसत्ता ज्यों की त्यों है, उसमें न बंधन है न मोक्ष है। हे रामचंद्र जी, जब मोक्ष की इच्छा होती है तब भी उसकी पूर्णता का क्षय होता है और निसंवेदन होने पर कल्याण होता है। जो अनाभास जड़ रूप परमपद है वह चैतन्य मुखत्व से रहित है। हे रामचंद्र जी, बंधन मोक्ष आदि भी कलना में होते हैं। जब कलना से रहित बोध होता है तब बंधन मोक्ष दोनों नहीं रहते। जब तक विचार से नहीं देखता तब तक बंधन और मोक्ष भासित होता है। विचार करने से दोनों का अभाव हो जाता है। जब अहम इदम आदिक भावना का अभाव हुआ तब किसको कौन बंध कहे और किसको कौन मोक्ष कहे। सब कलना चित्त के फुरने से होती है। जब चित्त का फुर्न नष्ट हुआ तब सब कलना का अभाव हो जाता है, तभी पुरुष शांति पाता है, अन्यथा नहीं पाता। इसे चित्त को आत्मपद में लीन करो। जिसके आश्रय से यह जगत उपजता और लीन होता है उसी अनुपम रूप प्रत्यक्ष प्रकाश रूप ज्ञान रूप आत्मा में तुम स्थित हो जाओ। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, परम तत्व परमात्म पद हमको सदा प्रत्यक्ष है और वस्तु रूप वही है, उससे कुछ भिन्न नहीं। यह प्रत्येक आत्मा सब सत्ता का दर्पण है, सब सत्ता इसी से प्रकट होती है। जैसे बीज से वृक्ष की सत्ता प्रकट होती है वैसे ही आत्मा से जगत सत्ता प्रकट होती है। हे रामचंद्र जी, मन बुद्धि चित्त अहंकार जड़ात्मक है, परमपद इनसे रहित है। ब्रह्मा विष्णु रुद्र आदि सब उसी में स्थित है। जैसे चक्रवर्ती राजा निर्धन से ऊंचा है वैसे ही उस सत्ता को पाकर जीव सब लोगों से ऊंचा हो जाता है। उस आत्मा को पाकर फिर मृत्यु नहीं प्राप्त होती, न कभी शोकवान होता है न क्षीण। एक क्षण मात्र भी जो अप्रमादी होकर आत्मा को ज्यों का त्यों जानता है वह संसार कलना को त्याग कर मुक्त होता है। राम जी ने पूछा, हे भगवान, मन बुद्धि चित्त और अहंकार का अभाव होने पर जो सत्ता सामान्य शेष रहती है उसका भान कैसे होता है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जो सब देहों में स्थित होकर भोजन और जलपान करता और देखता सुनता बोलता इत्यादि कर्म करता देख पड़ता है वह आदि अंत से रहित संवित सत्ता सर्वगत अपने आप में स्थित है। सब विश्वरूप वही है, आकाश में आकाश, शब्द में शब्द, स्पर्श में स्पर्श, नासिका में गंध, शून्य में शून्य, नेत्रों में रूप, पृथ्वी में पृथ्वी, जल में जल, तेज में तेज, वृक्षों में रस, मन मन में मन, बुद्धि में बुद्धि, अहंकार में अहंकार, अग्नि में अग्नि, उष्णता में उष्णता, घट में घट, पट में पट, वट में वट, स्थावर में स्थावर, जंगम में जंगम, चेतन में चेतन, जड़ में जड़, काल में काल, नाश में नाश, बालक में बालक, यौवन में युवा, वृद्धता में वृद्ध और मृत्यु में मृत्यु रूप होकर वही परमेश्वर स्थित हुआ है। हे रामचंद्र जी, इस प्रकार सब पदार्थों में वह अभिन्न रूप स्थित है। नानात्व दृष्टि भी आती है परंतु नाना नहीं है, भ्रम से भासित होती है। जैसे परछाई में भ्रम से वैताल जान पड़ता है, वैसे ही आत्मा में नानात्व भासित होता है। सब में, सब ठौर, सब प्रकार सर्व आत्मा ही स्थित है। ऐसा जो आत्मदेव सत्ता समान है उसमें स्थित हो। इतना कहकर वाल्मीकि जी बोले कि इस प्रकार जब वशिष्ठ जी ने कहा, तब दिन अस्त होने से सब सभासद परस्पर नमस्कार करके स्नान को गए और सूर्य के निकलते ही फिर अपने अपने आसन पर आ बैठे। राम जी ने पूछा, हे भगवान, जैसे हमारे स्वप्न में पुर, नगर और मंडल होते हैं, वैसे ही ब्रह्मादिक ने इस देह को ग्रहण किया है, उनको असत प्रतीत होते हैं, तब हमको दृढ़ प्रतीति कैसे उपजी है? वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, प्रथम ब्रह्मा को सर्ग असत सा भासित होता है, वास्तव नहीं। सर्वगत चैतन्य संवित संसार के दर्शन से जब सम्यक दर्शन का अभाव हुआ और स्वप्न रूप में आपसे अहम प्रतीति उपजी, तब वह दृढ़ होकर देखने लगा। जैसे अपने स्वप्न में जगत दृढ़ भासता है और मनुष्य उसे स्वप्न नहीं जानता, वैसे ही ब्रह्मा का जगत भी सत्य भासित होता है, स्वप्न नहीं जान पड़ता। जो पुरुष जो स्वप्न पुरुष से उपजा है सो स्वप्न रूप है। हे रामचंद्र जी, ऐसा जो सर्ग है वह जीव जीव प्रति उदय हुआ है। जैसे समुद्र में तरंग निकलते हैं, वैसे ही चैतन्य तत्व का आभास यह जगत दिखता है। जैसे स्वप्नपुर में असत पदार्थ होते हैं, वैसे ही ये पदार्थ भी अवास्तव है और मन के संकल्प से भ्रम मात्र ही स्पष्ट भासित होते हैं। हे रामचंद्र जी, ऐसा पदार्थ कोई नहीं जो इस जगत में सिद्ध नहीं होता, और का और नहीं भासित होता और मर्यादा नहीं त्यागता, क्योंकि सब पदार्थ मन के संकल्प से उपजे हैं। तुम देखो कि जल में अग्नि स्थित है, जैसे समुद्र में बड़वाग्नि है सो विपर्य है। इसी कारण कहता हूं कि सब मनो मात्र है। और देखो, आकाश में नगर बसते हैं, विमान प्रत्यक्ष चलते हैं और चिंतामणि आदि से कमल उपजते हैं। जैसे हिमालय पर्वत में बर्फ और सब ऋतु के फूल एक ही समय उपजते हैं, जैसे संकल्प के कल्पित वृक्ष से पत्थर निकल आते हैं, शिला में जल निकलता है, चंद्रकांत मणि से अमृत द्रवित होता है और निमेश में घट पट और पट घट हो जाते हैं, निदान स्वरूप के विस्मरण से यह जीव सत को असत देखता है। जैसे स्वप्न में वह अपना मरना देखता है, जल ऊपर को चलता देखता है, मेघ होकर स्वर्ग में गंगा बहती देखता है और पत्थर उड़ते देखता है। जैसे पंखों वाले पहाड़ उड़ते हैं और चिंतामणि शिलारूप से सब पदार्थ उपजते हैं, इत्यादि बातें भ्रम से नानात्व विपर्य रूप हो दिखती है। ऐसे तुम देखो कि सब मनोमात्र है और से और हो जाते हैं। हे रामचंद्र जी, यह इंद्रजाल गंधर्व नगर और शांबरी माया के सदृश है। असत ही ब्रह्म से जगत रूप होकर भासित होता है। ऐसा पदार्थ कोई नहीं जो सत नहीं और असत भी नहीं। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, यह संसार मिथ्या है। जो पुरुष इसको सत्य जानता है वह महामूर्ख है और भ्रम से भ्रम देखकर महामोह को प्राप्त होता है। जैसे कोई मृग गड्ढे में गिर पड़ता है तो दुखी होता है और फिर उससे भी बड़े गड्ढे में गिरता है तो अति दुख पाता है, वैसे ही जो मूर्ख पुरुष है वह आत्मा के अज्ञान से संसार रूपी गड्ढे में गिरता है और उससे अनेक भ्रम देखता है। एक स्वप्न के बाद वह दूसरा स्वप्न देखता है। हरि ओम, हरि ओम। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांतिः शांति ही, शांति ही। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।